ஞானத்தின் தான் சரியான கலாச்சார சட்சதன் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ். ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதனே ஸ்வயம் ரூப கதாமேகம் ததாதி ஸ்வபதாந்தகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாகர ஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் சஹகண லலிதா சீவசாகாந்விதம் நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாத்ய தேசதாரிணே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசவி கௌர பக்தவிருந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 புருஷோத்தம் ராம் பிரபு ஆப்கா பீமாரி கேசா ஹை ஹரே கிருஷ்ணா புருஷோத்தம் ராம் பிரபு ஆவாஜ் ஆ ரஹி ஹரே கிருஷ்ணா புருஷோத்தம் ராம் பிரபு சாயத் பத்தா நீ முஜே ஜஸ்ட் உன்ஸே பூச்சனா தா உன்கா கேசா சல் ரஹா அபி குவாரண்டைன் கித்னே தின் கா பாக்கி ஹை
25 तारीख तक क्वारंटाइन है और उनका तबीयत तो ठीक है अभी थोड़ा पहले वो स्मेल नहीं आ रही थी तो अभी आना ना स्टार्ट हो गया है अभी
और
हरे कृष्ण
प्रभु सब ठीक है सनातन शिक्षा प्रभु
एक्चुअली मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था एक्चुअली पता नहीं लॉक था तो बहुत देर से मैं अनम्यूट कर रहा था मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था तो जी तबीयत अभी काफी बेटर है पहले से Okay. और जो स्मेल था अभी वो भी आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे और बाकी तो सारी मोस्टली जो मेडिसिन थी तो अभी मना कर दिया डॉक्टर्स ने खाने के लिए बोले कि आपको 5 दिन हो गए तो अब खाने का जरूरत नहीं आप रेस्ट करिए सही
हाँ.
और ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी अभी अच्छा है बेहतर है
ओके
जी
एक महाराज को आज हमने एडमिट किया है उनके लिए प्रार्थना करिएगा लोकनाथ महाराज के बहुत सीनियर शिष्य हैं रूप रघुनाथ स्वामी महाराज उनको आज हमने बड़ौदा में एडमिट किया एक हॉस्पिटल में आईसीयू में उनका लंग में ज्यादा इन्फेक्शन है और महाराज की एज भी 79 इयर्स है
जरूर प्रभु जी जरूर प्रभु
और सनातन शिक्षा प्रभु भी है हमारे साथ में सनातन शिक्षा प्रभु ओके थैंक यू और कौन है सुभव्रत माता जी आप मायापुर में है अभी हरे कृष्णा सुभव्रत माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अच्छा मेरी आवाज है सब जगह पहुंच नहीं रही क्या शिवमपुर आपको आवाज आ रही मेरी साहब
यस तो आवाज आ रही है
ओके ठीक है ठीक है लास्ट वीक हमने दधीचि मुनि ने जब अपना शरीर की हड्डियां देवताओं को प्रदान कर दी थी वहां तक हमने कंप्लीट किया था भगवान उसके बाद विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया था वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक और उसके बाद हमें डिस्कस करना बाकी था देवताओं और दानवों का युद्ध और विशेष रूप से इंद्र और मृतासुर का युद्ध और इंद्र और मृतासुर के युद्ध के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मृतासुर का पिछला जीवन जो कि राजा चित्रकेतु की स्टोरी है और राजा चित्रकेतु की स्टोरी कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट उसमें आता है जब दिति इंद्र को मारने का प्रयास करते हैं और वो 6 कैंटो का लास्ट टॉपिक होगा तो मृतासुर का संहार उसके बाद चित्रकेतु की कथा उसके बाद दिति जब इंद्र का वध करने का प्रयास करते हैं ये 3 सेक्शन बाकी हैं छठवें स्कंद में उसके बाद छठवां स्कंद समाप्त हो जाएगा तो जब दधीची के हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ उसके बाद उस वज्र में भगवान नारायण की शक्ति को इन्वेस्ट किया गया विश्वकर्मा के द्वारा और उसके बाद वैवस्वत मनु में पहले पहले चतुर्युग में त्रेता युग में देवताओं और दानवों के बीच में बहुत भयंकर बैटल हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और ये युद्ध कहाँ पे होता है? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पे नर्मदा नदी ये वाली नहीं है जो कि गुजरात में बहती है, ये नर्मदा नदी जो है वो स्वर्ग लोक के पास में है, वहां पे युद्ध हुआ। त्रेता युग में वैवस्वत मन्वंतर के पहले चतुर्युग का जो त्रेता युग था उसमें ये इंद्र और बृहस्पति का प्रसिद्ध युग युद्ध आता है। श्रीमद भागवतम में बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कई श्लोक इसमें आते हैं बृहस्पति और इंद्र के संवाद के बारे में। तो इंद्र के साथ साथ 11 के 11 रुद्र भगवान शिव जो है, और वसु, अश्विनी कुमार, पितृगण, मरुदगण, विभू देवता, साध्य, विश्वदेव, ये सभी देवता देवता इंद्र के साथ थे। और दूसरी तरफ जब बृहस्पति का डिस्क्रिप्शन आता है तो महान महान राक्षसों का नाम आता है, नमुची, माली, सुमाली, संबरा, हयग्रीव, विप्रचित्ति, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, ये सब महान राक्षस हैं। अलग अलग पुराणों में इनके नाम आते हैं। महान मतलब नेगेटिव तरीके से महान। इसमें से माली और सुमाली जो है, हम जानते हैं माली सुमाली रावण के नाना थे, और सुमाली का राज्य वेस्ट इंडीज के पास में था, जिसको अभी हम सोमालिया देश बोलते हैं। सोमालिया कंट्री जो है वो सुमाली से ही आया है। सुमाली वहां पे राज्य करते थे, उनके राज्य के अवशेष अभी भी वहां पे पाए जाते हैं। और बाद में ऐसा बताते हैं कि सुमाली ने वो राज्य रावण को ही दे दिया था, तो रावण का बाद में वहां पे राज्य होता था। पहले रावण के नाना ने राज्य किया था, फिर रावण ने राज्य किया। इसी तरह से संबरासुर, नुमुची नाम से एक राक्षस है जिनका वज्र से भी मृत्यु नहीं हो सकता था, इतने खतरनाक राक्षस थे, उनको बाद में फोम के अस्त्र से मारा गया था। इसी तरह से हयग्रीव नाम के एक राक्षस थे, उनको हयग्रीव नाम के अवतार ने मारा था। विप्रचित्ति राक्षस थे, प्रहेति और हेति ये दो भाई थे, इनको भी इंद्र ने एक बार मारा था, एक बार भगवान शिव ने भी इनका विनाश किया था। तो सभी हम कई बार सोचते हैं कि केवल रामायण महाभारत ही बहुत बड़ा युद्ध था। युद्ध देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध तो हमेशा से चला आ रहा है, जब से ब्रह्मांड चालू हुआ तब से युद्ध चला आ रहा है, बहुत महान महान युद्ध हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जब अमृत मंथन होता है, अमृत मंथन के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इसी तरह से ये एक युद्ध है जो कि बृहस्पति की सेना के साथ और इंद्र की सेना के साथ हो रहा है। और जब दोनों की दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, और सबसे पहले राक्षसों की तरफ से अटैक होता है, और राक्षस लोग गदे गदा के साथ पेड़ों पेड़ों की डालें खींच खींच के पेड़ों को जड़ से उखाड़ के, और अलग अलग तीरों से, भालों से, हर चीज से देवताओं को भर देते हैं। ऐसा एक समय के लिए ऐसा लगता है कि देवता शायद पूरी तरह से डूब जाएंगे दैत्यों के प्रहार में, परंतु देवता इंद्र के संरक्षण में बहुत एक्सपर्ट थे, तो देखते ही देखते सारे के सारे अस्त्र खत्म कर देते हैं। देवताओं के पास ये अस्त्र पहुंच पाए उसके पहले ही देवता वो सारे अस्त्र को खत्म कर देते हैं। और जब राक्षसों के पास अस्त्र कम पड़ जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो फिर वो पहाड़ों को उठा के फेंकते हैं, पेड़ों को उठा के फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और पहाड़, पेड़ और पत्थर को भी देवता लोग अपनी शक्ति से तोड़ देते हैं। और उसके बाद देवता लोग बहुत शक्तिशाली तरीके से दानवों पे आक्रमण करते हैं। और जब दानव देखते हैं कि देवता इतनी तेजी से उन पे आक्रमण कर रहे हैं, तो वो डर जाते हैं, भागने लगते हैं। बड़े बड़े राक्षस जो है ये डर जाते हैं। और जब बृहस्पति इनको देखते हैं कि सबके सब राक्षस इतने डर चुके हैं, तो बृहस्पति फिर राक्षसों को डांटते हैं कि क्या आपने इतने इतना ही सीखा है, इतने बड़े बड़े राक्षस है परंतु युद्ध में अपनी पीठ दिखा के भागना। पहले के समय में अगर कोई युद्ध में पीठ दिखा के भागा जाता था, तो इवन क्षत्रिय वंश में तो इस प्रकार से था कि अगर कोई राजा युद्ध में अपनी पीठ दिखा के भागता था, तो अगर जब वो घर पे आता था तो उसकी वाइफ घर में नहीं आने देती थी, बोलते थे आपके जीवन का मतलब क्या, आपने युद्ध में से पीठ दिखा के भाग गए, इतना ज्यादा निंदनीय माना जाता था। क्षत्रिय कभी भी पीठ दिखा के नहीं भागते थे। तो इसीलिए बृहस्पति ने अपने जो राक्षस लोग थे उनको डांटना चालू किया कि यहाँ से मत भागो, और जो भी इस भौतिक संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। भौतिक संसार में कोई भी परमानेंट तरीके से नहीं जी सकता है, इसलिए युद्ध में अगर आप मरेंगे तो उच्च गति को प्राप्त करेंगे, और जीवित रहेंगे तो धरती का भोग करेंगे, धरती के राज्य का भोग करेंगे। इसलिए कभी भी युद्ध से मत भागो। और साथ साथ ये दूतासुर समझा भी रहे हैं कि दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक मृत्यु होती है योग की साधना के द्वारा और दूसरा युद्ध में मारे जाने के द्वारा, और दोनों प्रकार की मृत्यु में व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसलिए आपको युद्ध से बिना भागे हुए वापस आकर युद्ध करना चाहिए। वृतासुर इस प्रकार से समझा रहे थे। वृतासुर के समझाने के बाद भी राक्षस लोग नहीं सुन रहे थे, इतना ज्यादा डरे हुए थे इंद्र की और देवताओं की शक्तियों से कि राक्षस भागे जा रहे थे। तो फिर वृतासुर ने क्या किया, उसने सोचा कि देवताओं को समझाने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं राक्षसों को समझाने का कुछ मतलब नहीं है, तो उसने देवताओं को चिल्लाना चालू किया कि आप लोगों को समझना तो चाहिए कि अगर कोई युद्ध छोड़ के भाग रहा है तो आपको उसको पीछे से अटैक नहीं करना चाहिए। आप किस प्रकार के देवता हैं, किस प्रकार के वीर हैं कि आप लोगों को पीछे से अटैक कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने देवताओं को डांटना चालू किया, देवताओं से बोला कि आप अगर आपको हीरो बनना है तो हीरो का ये गुण होता है कि वो कभी भी अपने शत्रु को नहीं मारता है अगर शत्रु भाग रहा हो, पीछे से उसको वार नहीं करता है। अगर आपके पास वास्तविकता में हीरोइज्म है तो मेरे सामने खड़े होकर देखिए, फिर मैं देखता हूँ कि आप मेरा सामना कैसे करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया। और वृतासुर इतना बड़े राक्षस थे, राक्षसों की हिस्ट्री में वृतासुर को सबसे बड़े राक्षसों में माना जाता है। और वृतासुर इतने बड़े राक्षस थे कि जब उन्होंने जोर से इस प्रकार से बोलना चालू किया तो देवता लोग डर गए और डर के आंखें बंद कर ली। कई देवता तो फेंट होके जमीन में गिर गए। और वृतासुर ने उसके बाद अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकालने के बाद उसने देवताओं की तरफ त्रिशूल से वार करना चालू किया। और वृतासुर इतने शक्तिशाली थे कि जब वो चल रहे थे तो धरती कांप रही थी, पूरी धरती कंपायमान हो रही थी, और उनके पैरों के नीचे बहुत सारे देवता कुचले जा रहे थे। जैसे कोई हाथी पागल हो जाता है तो पेड़ों को कुचलता है, छोटे छोटे पौधों को कुचलता जाता है, उसी प्रकार से देवता उनके वृतासुर के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। और जब इंद्र ने इस प्रकार से देखा कि वृतासुर इतना ज्यादा विनाश कर रहे हैं, तो इंद्र ने अपना एक एक गदा खींच के वृतासुर के ऊपर मारा, परंतु वृतासुर के पास गदा पहुंचे उसके पहले ही वृतासुर ने उस गदा को पकड़ के उलट के ऐरावत के ऊपर वो गदा फेंक दिया। और ऐरावत को जैसे ही वो गदा लगा तो ऐरावत का बैलेंस बिगड़ गया और उनके मुख से खून निकल के ऐरावत नीचे गिर गए। ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि जैसे ऐरावत की मृत्यु हो गई हो, इतना ज्यादा वो जोखिम में आ गए। और इंद्र के पास से भी उनका हथियार छूट के गिर गया। इंद्र के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके जो उनको साथ में लेके आए थे, जो उनके क्या बोलते हैं सारथी, इंद्र के जो सारथी थे, उनकी हालत ऐसी पहली बार हुई। और इंद्र का हाथी भी इस प्रकार से पहली बार डिफीट हुआ, इसलिए इंद्र को बहुत अचरज हुआ और बहुत शर्म भी आई। तो इंद्र सिर झुका के खड़े हो गए। इंद्र का शस्त्र भी नहीं बचा था, इंद्र का शस्त्र भी उसने छुड़ा लिया था, फेंक दिया था। तो वृतासुर ने जब देखा कि इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो वृतासुर ने इंद्र से फाइट नहीं किया, रुक गए वहां पे। और उतनी देर में इंद्र ने ऐरावत के सिर को अपने हाथों से छुआ, और चूंकि इंद्र के हाथ से अमृत निकलता है, इसलिए इंद्र ने जब उनको हाथ से छुआ तो ऐरावत फिर से जीवित हो गए और सारे दुख और सारे कष्ट उनके खत्म हो गए। उसके बाद जब वृतासुर ने देखा कि इंद्र उनके सामने आ रहे हैं वज्र के साथ, तो वृतासुर को तो पता था कि वज्र से उनकी मृत्यु होगी। वज्र इसीलिए आया है कि वृतासुर को मारा जा सके। तो वो समझ गए कि अभी मरने का समय पास में आ रहा है। और वृतासुर ने सोचा कि अभी हम अच्छे से फाइट करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। और इंद्र को देख के वृतासुर को गुस्सा आया, क्योंकि हमने देखा था पिछली क्लास में कि इंद्र ने वृतासुर के भाई को मारा था, विश्वरूप नाम से जो इन भाई थे उनको मारा था। और इसीलिए विश्वरूप के पिता जो थे त्वष्टा, उन्होंने यज्ञ करके वृतासुर को जन्म दिया था। तो जैसे ही भृतासुर ने इंद्र को देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया, और इतने गुस्से में भृतासुर ने अपने इंद्र को जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। बोला कि आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे भाई को मारा है वो व्यक्ति आज मेरे सामने है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारे हृदय को मैं अपने तीरों से भेद दूंगा, और जब मैं तुम्हें मार डालूंगा उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी, उसके बाद ही मैं अपने भाई को मेरा जो ऋण है उस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। और केवल इंद्र को उन्होंने बताया, क्योंकि इंद्र की गलती भी थी, हालांकि इंद्र को कोई अपने गुरु या ब्राह्मण को इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए था, इंद्र ने वो मिस्टेक की थी, तो वो मिस्टेक ये बता रहे हैं कि आपने केवल अपना इंद्रिय भोग करने के लिए ही आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। विश्वरूप जो थे वो ब्राह्मण थे और उनकी हत्या इंद्र ने की थी, और इस प्रकार से भृतासुर उनको जोर जोर से भले बुरे शब्द बोलने लगे कि आपके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई कृपा नहीं है, तुम तो कावर्ड मतलब कायर हो, और बहुत अच्छा हुआ कि आज आप मेरे सामने आ गए, आप केवल अभी तक अपने जो आपने कर्म कांड किया है उसके कारण आप इंद्र की पोस्ट पे हैं, नहीं तो अभी तक तो मैं आपको मार चुका होता, और अभी मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम जीवित नहीं बचोगे, या तो आपको मैं जला दूंगा नहीं तो आपकी डेड बॉडी को कुत्ते कुत्ते खाएंगे, और अगर दूसरे देवता लोग भी तुम्हारे पीछे आके मुझे अटैक करेंगे मैं सबको खत्म कर दूंगा, सारे देवताओं को खत्म करके उन सबकी बलि चढ़ाऊंगा भैरव देवता के ऊपर, और इस प्रकार से मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। और उसके बाद इन्होंने अमेजिंगली ऐसा होता है कि भृतासुर अलग तरीके से बोलना प्रारंभ कर देते हैं, इंद्र को भी समझ में नहीं आता है क्यों बोल रहे हैं, भृतासुर भगवान विष्णु से प्रार्थनाएं करने लगते हैं, और जो प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं शुद्ध भक्त की प्रार्थनाएं होती हैं। तो जब इंद्र ये देखते हैं कि भृतासुर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये राक्षस इस तरह से प्रार्थना कैसे कर रहा है, तो वो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि भृतासुर राक्षस है कि कौन है, साथ साथ भगवान विष्णु ने बोला भी था कि भृतासुर जो है वो भक्त है, उस समय इन लोगों को बोला था तब भी उनको समझ में नहीं आया था, और अभी जब भृतासुर भगवान विष्णु के लिए प्रार्थनाएं करने लगते हैं तो उनको फिर समझ में नहीं आता है कि भृतासुर है कौन। तो भृतासुर की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि भृतासुर को पता था कि अभी मृत्यु का समय आने वाला है, तो इतना इंद्र को इतना बोलने के बाद वो बताते हैं कि चूंकि भगवान विष्णु आपकी साइड में है और दधीचि ऋषि की हड्डियां भी आपको मिल चुकी हैं, इसलिए आपको तो जीतना है, आपको तो हम आप तो जीतेंगे, विजय आपके आपके लिए गारंटीड है, और आप जब मुझे भृतासुर को यह भी पता था कि वज्र के द्वारा उसकी मृत्यु होनी है, तो वो बोलते हैं कि आपके वज्र के द्वारा मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और जब मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरणों में लगाऊंगा तो मैं सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त कर पाऊंगा। इसके बाद भृतासुर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं कि जो भी लोग भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पण करते हैं और हमेशा उनके बारे में सोचते हैं उनको भगवान अपने सेवक के जैसा स्वीकार करते हैं, और भगवान ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी इंद्रिय भोग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग किसी को प्रदान करने से व्यक्ति मेंटली परेशान हो जाता है, उसका घमंड बढ़ जाता है, और भगवान की कृपा से उनके भक्त इस प्रकार के भोग से बच जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से, परंतु ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों में पाई जा सकती है, और उनमें नहीं जो कि भौतिक भौतिक गेन प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से इंद्र को बोल के भृतासुर इतना बोलने के बाद फिर इंद्र की तरफ से ध्यान हटा दिया, फिर पूरी तरह से भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना करने लगे, और बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं, जब अगर आप कभी जब भागवतम पढ़ेंगे तो इन प्रार्थनाओं को पढ़िएगा। भृतासुर बताते हैं, हे भगवान मैं फिर से आपकी सेवा में कब एंगेज हो पाऊंगा, मैं कब ऐसा होगा कि मेरा मन हमेशा आपके लीलाओं के बारे में सोचे और मैं हमेशा आपकी लीलाओं के बारे में बोल सकूं और मेरा शरीर हमेशा आपकी सेवा में लग सके, ऐसा दिन कब आएगा। इसके बाद भृतासुर का एक फेमस श्लोक है, ननाष्टम न च पारमेष्ठम, कि भृतासुर क्या क्या नहीं चाहते। इस श्लोक में भृतासुर बताते हैं कि न नाक प्रष्ठम, मैं इस भौतिक संसार के बड़े बड़े देवता बनना नहीं चाहता हूँ, न च पारमेष्ठम, ना मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ, और लिबरेशन, ना तो मैं मुक्ति चाहता हूं ना सपाधिपत्यम, ना तो मैं योग सिद्धि चाहता हूं। अगर ये सब, मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके चरण मुझे मिले, चरणों की सेवा करने मुझे मिले, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता हूं। तो ये प्रार्थना बहुत फेमस है छठवें स्कंद की। प्रभुपाद जी ने भी इस प्रार्थना को कई बार बताया है। छठवें स्कंद का श्लोक नंबर मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है। नन्ना कृपष्ठम न च पारमेष्ठम, मृतसु के फेमस श्लोक में आता है। इसके बाद बताते हैं कि जिस प्रकार से छोटी चिड़िया हमेशा अपनी माँ माँ का वेट करती है कि उनकी माँ कब लौटेंगी और उनको भोजन प्रदान करेगी, और जिस प्रकार से गाय का छोटा बछड़ा जब रस्सी में बंधा होता है तो वो इंतजार करता है कि कब उसकी माँ दूध लगाएगी, जब कब उसकी माँ उसको दूध देगी, तो इसी तरह से। और जब किसी पत्नी का पति उससे दूर होता है तो पत्नी पति का बहुत तीव्रता से इंतजार करती है, उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा प्राप्त करने का इंतजार कर रहा हूँ। तीन उदाहरण उन्होंने दिए कि एक तो पक्षी अपनी माँ का इंतजार करते हैं भोजन के लिए, दूसरा गाय का बछड़ा दूध दुहने का इंतजार करता है जिससे उसको दूध मिलेगा, तीसरा जब पति घर से बाहर जाता है लंबे समय के लिए तो पत्नी पति का इंतजार करती है। इतनी तीव्रता से मैं आपके चरणों की सेवा करने का इच्छुक हूँ। मैं इस भौतिक संसार में लगातार घूम रहा हूँ और आपकी बहिरंगा शक्ति के कारण मैं अपने शरीर से और शरीर से संबंधित बाकी सब वस्तुओं से आसक्त हो चुका हूँ, परंतु अभी मैं इन सब वस्तुओं से दूर होना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन, चेतना और जो मेरे पास है वो सब कुछ आपके ऊपर आसक्त हो, मैं और संसार में किसी से आसक्त नहीं हूँ। ये प्रार्थना सुन के लग नहीं रहा है कि राक्षस प्रार्थना कर रहा है। ये मिस्ट्री अगले सेक्शन में रिवील होती है कि ये वास्तविकता में राक्षस नहीं है, ये बहुत भगवान विष्णु के बहुत महान भक्त हैं भृतासुर, जो कि एक एक अभिशाप के कारण, पार्वती ने उनको श्राप दिया उसके कारण राक्षस की योनि में आते हैं, परंतु वास्तविकता में भगवान के बहुत महान भक्त हैं, इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो इसके बाद भृतासुर बहुत बहुत उत्सुक थे मरने के लिए। क्यों उत्सुक थे? क्योंकि भृतासुर जानते थे कि वो मरेंगे तो भगवत धाम वापस जाएंगे। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो भृतासुर इंद्र से ज्यादा भाग्यशाली थे, क्योंकि इंद्र तो यहीं के राज्य के पीछे लड़ाई कर रहे थे, परंतु भृतासुर को तो भगवान का धाम प्राप्त होने वाला था। तो इसलिए भृतासुर बहुत ईगर थे, बहुत उत्सुक थे मरने के लिए। तो दोनों इंद्र और भृतासुर भगवान के भक्त हैं, परंतु इंद्र जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, पर भृतासुर भगवान के शुद्ध भक्त है। और इंद्र ने भगवान से इंस्ट्रक्शन लिया जिससे भृतासुर को मारा जा सके। भृतासुर भी खुश थे इंद्र के हाथों मर के, जिससे कि वो भगवत धाम वापस जा सके। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान वास्तविकता में भृतासुर पर ज्यादा कृपालु थे, क्योंकि इंद्र को तो उन्होंने स्वर्ग का राज्य दिया, पर भृतासुर को उन्होंने भगवत धाम में परमानेंट अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। तो उस तरह से देखा जाए तो भृतासुर ज्यादा सौभाग्यशाली थे, पर इंद्र को ऐसा लगता है कि इंद्र जीत गए, परंतु इस युद्ध में भृतासुर जीते। हालांकि भृतासुर को भगवान ने, इंद्र ने मार दिया, परंतु मरने के बाद भी भृतासुर जीते, क्योंकि मरने के बाद उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो जब इंद्र ने भृतासुर से ऐसी प्रार्थनाएं सुनी, भृतासुर के मुख से इस प्रकार से प्रार्थनाएं सुनी, तो इंद्र भी थोड़े दुखी हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत महान भक्त हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। हाँ, शिवम प्रभु ने यह श्लोक भेजा है छठवें स्कंद का 11वां अध्याय का 25वां श्लोक। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्व विरह एकांक्ष। सेम श्लोक है। न नाक पृष्ठम, कि मैं इस देवताओं के लोकों में कोई सौभाग्य नहीं चाहता हूँ। न च पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का नाम है, तो मैं ब्रह्म लोक में भी नहीं जाना चाहता हूँ, ब्रह्मा बनना भी नहीं चाहता हूँ। न सार्वभौमम, इस संसार का राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। न रसाधिपत्यम, ना तो मैं रसातल बाकी सभी सिद्धियों का स्वामी बनना चाहता हूँ। न योग सिद्धि अपुनर्भवम, अपुनर्भवम मतलब मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ और योग सिद्धि भी नहीं चाहता हूँ। समंजसत्व विरह नकांक्ष, आपके सेपरेशन के अगर आपका संग मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इन सब वस्तुओं को नहीं चाहता हूँ, मैं केवल आपका संग चाहता हूँ। ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, 6:11:25। तो जब इंद्र इस प्रकार से दुखी थे इंदु को लग रहा था कि अभी मुझे वज्र मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इतने अच्छे भक्त थे इसको कैसे मारेंगे। परंतु बृतासुर तो मरना चाहते थे, तो बृतासुर ने सोचा कि अगर अभी इंद्र को हम कुछ जवाब नहीं देंगे तो इंद्र शायद हो सकता है मारे नहीं। तो बृतासुर तो मृत्यु चाहते थे, वो जीतना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंद्र पे अटैक करना चालू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने अपने त्रिशूल को इंद्र की तरफ फेंका और बृतासुर का त्रिशूल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे धूम केतु जमीन की तरफ आ रहा हो। परंतु इंद्र ने उस बृतासुर के त्रिशूल को अपने वज्र से काट दिया और तुरंत उन्होंने वज्र फेंका और बृतासुर की भुजाओं को सीधे राइट हैंड की भुजा को काट दिया और बृतासुर की भुजा की लंबा बृतासुर की भुजा का डिस्क्रिप्शन आता है कि इतनी मोटी भुजा थी कि ऐसा लगता था कि वासुकी सांप के शरीर के जैसी मोटी थी। तो एक भुजा कटने के बाद भी बृतासुर गुस्से में इंद्र की तरफ भागते हैं और इंद्र के मुख के नीचे एक गदा मारते हैं और ऐरावत को फिर से एक मुक्का मारते हैं, जिसके कारण से इंद्र ऐरावत के साथ साथ नीचे आ जाते हैं और इंद्र के हाथ से भी वज्र गिर जाता है। और जब इस प्रकार से इंद्र देखते हैं बृतासुर की शक्ति, तो इंद्र को बहुत अचरज होता है कि कोई राक्षस इतना शक्तिशाली कैसा हो सकता है कि मेरे हाथ से वज्र गिरा दिया। और सारे के सारे देवता लोग डर जाते हैं कि इंद्र अभी हार जाएंगे और बृतासुर की भी प्रशंसा करते हैं कि बृतासुर इतने शक्तिशाली हैं कि इंद्र को भी हराने में सक्षम है। तो बृतासुर ने फिर बोला इंद्र को कि अपना वज्र उठाओ, क्योंकि जब तक आप वज्र नहीं उठाओगे तब तक मैं प्रहार नहीं करूंगा, मैं अकेले में जिस ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करता जिसके पास हथियार नहीं हो। तो बृतासुर ने बोला कि आप वज्र उठाइए और मुझे मारिए, अभी आपके लिए दुख मनाने का समय नहीं है। हर व्यक्ति ब्रह्मांड के अंदर, हर व्यक्ति चाहे वो महान महान देवता हो, वो सभी भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई नाटक बनाने का पपेट होता है, वो अपने आप नहीं घूमता है, उस कोई और उसको घुमाता है, उसी प्रकार से हम सभी भगवान के बनाए हुए संसार में नाच रहे हैं। भगवान वास्तविकता में तीन गुणों के द्वारा हमें नचाता है और सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए व्यक्ति को सुख दुख में समान होना चाहिए, हार और जीत में समान होना चाहिए और प्रशंसा और अपयश में भी समान होना चाहिए और जीवन और मृत्यु में भी समान होना चाहिए। और चूंकि बृतासुर की इतनी शक्ति इंद्र ने देखी है तो इंद्र डर चुके हैं, तो बृतासुर उनको एनकरेज करने के लिए बोलते हैं, देखो मैं तो ऑलरेडी हार चुका हूँ क्योंकि मेरा अस्त्र शस्त्र भी गिर गया है, मेरी भुजाओं को भी आपने काट दिया है, मैं तो अपना फाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं दुखी नहीं हूँ, आपको भी दुखी नहीं होना चाहिए, वो फाइट करिए। ये सोचिए कि ये जो युद्ध है ये एक गैम्बलिंग मैच के जैसा है जिसमें कि हमारे जीवन दांव पे लगे हुए हैं, कोई नहीं समझ सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बृतासुर इस समय इंद्र को समझा रहे हैं, हालांकि वो राक्षस के रूप में है परंतु वो इंद्र को एक गुरु के समान समझा रहे हैं। और बृतासुर जानते थे कि वो हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हार को स्वीकार भी किया, परंतु वो इंद्र को मारने का प्रयास करते रहे और अब इंद्र को मारने का और इंद्र को एनकरेज करने का प्रयास करते रहे। जब इंद्र को इस प्रकार से इंद्र ने फिर से अपना थंडरबोल्ट उठाया और फिर से बोला कि हे राक्षस, मैं आपके दृढ़ प्रतिज्ञा से समझ सकता हूँ कि आप भगवान के बहुत महान भक्त हैं। सामान्यतः राक्षस लोग तो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, परंतु ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि आपने भगवान में अपना मन को फिक्स किया है और जो भी भगवान के लिए भक्ति करता है वो हमेशा अमृत के समुद्र में स्नान करता है, उसके लिए छोटे छोटे डिचेज में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। तो इंद्र और बृतासुर के बीच में शुद्ध भक्ति की वार्तालाप हो रही है, उसके बाद इन्होंने फिर से फाइटिंग करना चालू कर दिया। बृतासुर ने एक गदा उठाया और उसको जोर से घुमा के इंद्र की तरफ फेंका, इंद्र ने अपने वज्र से उसको खत्म कर दिया और बृतासुर का दूसरा भुजा जो था लेफ्ट लेफ्ट आर्म था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और ऐसा करते करते बृतासुर के खून बहुत तेजी से खून निकल रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि बृतासुर जो थे वो इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कोई कोई पहाड़ जिसके पंख काट दिए। पहले के समय में पहाड़ों के पंख होते थे, पहाड़ होते होते कहीं भी लैंड हो जाते थे तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, इसलिए इंद्र ने एक बार सभी पहाड़ों के पंख काट दिए। उसके बाद से पहाड़ जो है ये उसी जगह पे स्थित रहते हैं, नहीं तो पहले पहाड़ उठे हवा में उड़ते थे। तो बृतासु इसी प्रकार से लग रहा था जैसे कोई पहाड़ हो जिसके पंख काट दिए हैं। फिर बृतासु ने अपना मुख जमीन पर रखा और अपने मुख को पूरा फैलाया, मुख के नीचे का हिस्सा जमीन पे था, ऊपर का हिस्सा आकाश में था। तो ऐसा लग रहा था कि बृतासु का मुख पूरा ऊंचाई तक फैला हुआ है और उसकी जीभ एक बड़े सांप के समान थी, और बृतासु अपने इस मुख के द्वारा इंद्र को खाने का प्रयास कर रहे थे। और एकाएक वो आए इंद्र के सामने और बृतासु ने इंद्र को खा लिया, ऐरावत के साथ इंद्र को अपने मुंह के अंदर डाल दिया। और जब इस प्रकार से देखा जैसे जैसे कोई महा बड़ा अजगर छोटे सांप को या किसी को अपने मुंह में डाल लेता है, उसी प्रकार से बृतासु ने इंद्र को अंदर खा लिया। और ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने जब ये देखा तो वो दुखी हो गए कि क्या हो गया है, इंद्र कैसे, इंद्र की मृत्यु कैसे हो सकती है। परंतु चूंकि इंद्र नारायण कवच उन्होंने पहना हुआ था, नारायण कवच के द्वारा वो प्रोटेक्टेड थे, तो इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। और इंद्र उनके अंदर जाके वज्र के प्रहार उन्होंने अंदर से करना चालू किया और बृतासुर का पेट काट के इंद्र बाहर निकल के आए। और इंद्र जैसे ही बाहर निकले उन्होंने बृतासुर के सिर को काटना चालू किया, उनका बृतासुर का सिर एक पहाड़ के जैसा था। और वज्र चूंकि बृतासुर की गर्दन पे घूम रहा था उसको काटने के लिए, उसके बाद भी इसमें लिखा है 1 साल लगा वज्र को उसकी गर्दन काटने में, 1 साल लगा। इतनी मोटी इतनी बड़ी गर्दन थी कि वज्र काट रहा था परंतु 1 साल तक वज्र काटता रहा। और फाइनली एक सूटेबल टाइम पे बृतासुर का सिर जमीन पे गिर गया। और इसको देख के देवताओं ने इंद्र के ऊपर फूल डाले, फूल फेंके और सब जगह वैदिक मंत्रों का जप हुआ। बृतासुर का जो आत्मा थी वो उनके शरीर से निकल के भगवान के धाम चली गई और भगवान के भक्त बन गए, भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ लोक के निवासी बन गए। एक्चुअली जब बृतासुर ने इंद्र को अपने मुंह के अंदर डाल लिया था तो बृतासुर समझ गए, बृतासुर ने सोचा था कि इंद्र को उन्होंने मार दिया है और इसलिए फाइटिंग की कोई आवश्यकता नहीं, और इसलिए बृतासुर ने उसी समय अपने सारे क्रियाकलापों को रोक दिया था और रोक के भगवान की समाधि में चले गए थे। तो जब इंद्र ने बृतासुर का गर्दन काटा उस समय बृतासुर के शरीर से उनकी आत्मा ऑलरेडी निकल चुकी थी बाहर, बृतासुर की डेड बॉडी को ही इंद्र ने काटा, क्योंकि बृतासुर भगवान के ऊपर ध्यान लगा के अपनी आत्मा का त्याग कर चुके थे, योग समाधि में जा चुके थे। बृतासुर की मृत्यु के बाद सभी देवता लोग खुश हो गए, तीनों लोकों में खुशी हो गई। केवल इंद्र दुखी थे क्योंकि इंद्र ने उनसे बात करके देखा था कि ये तो बहुत महान भक्त हैं, तो इंद्र को दुख हो रहा था कि इतने महान भक्त को मारने का मुझे, मैंने उसको क्यों मारा और इसका मुझे पाप फल लगना चाहिए, इंद्र को इस प्रकार से डर लग रहा था। और साथ में इंद्र ने ये भी सोचा कि विश्वरूप को जब मैंने मारा था वो ब्राह्मण थे तो उस समय मुझे बहुत सारे पाप लगे थे, परंतु उस समय मुझे बचा लिया गया, परंतु अभी मैंने फिर से बृहदासुर को मारा है जो कि ब्राह्मण है, विश्वरूप के भाई है और भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो मुझे फिर से पाप लगेगा। और ऋषियों ने बोला कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आपको पाप से छुड़ा लेंगे, कोई समस्या नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने से भगवान को खुश करके हम छुड़ा लेंगे। परंतु वो यहाँ पे भूल गए कि ये जो है ये 7वां नाम अपराध कहलाता है, नाम के बल पे पाप करना। पहले पाप किया फिर बोला कि यज्ञ करके हम आपको छुड़ा लेंगे, कोई समस्या नहीं। इसलिए इंद्र के जो पाप थे वो यज्ञ करने के बाद भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि यज्ञ इसीलिए किया गया कि पाप को छुड़ाना है। उन्होंने बृतासुर को मारने के पहले इंद्र को एनकरेज किया था कि आप मार दीजिए, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए इंद्र के पाप कर्म खत्म नहीं हुए और पाप कर्म एक राक्षस का रूप लेके इंद्र के पीछे पीछे भागने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने पहले जिम्मेदारी ली थी इसलिए इंद्र ने बृतासुर को मारा था। तो जब पाप कर्म आए तो इंद्र जब ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों ने बोला कि नहीं अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो इंद्र आगे आगे भाग रहे थे और पाप कन्या जो एक औरत के रूप में थी वो पाप पुरुष पाप जो था वो औरत के रूप बना के आया था, चांडाल औरत के रूप में, और वो इंद्र के पीछे पीछे भाग रही थी और इंद्र आगे आगे भाग रहे थे। इंद्र ने पूरे चारों सब जगह भागे परंतु जहां भी जाते थे वो औरत उनके पीछे पीछे भागती थी। फाइनली इंद्र मानस सरोवर में गए, मानसरोवर जो तालाब है वहां पे जाते हैं, मानसरोवर के अंदर कमल के जो कमल है वहां पे उन कमल में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो लक्ष्मी जी के आश्रय में इंद्र गए, 1000 साल तक वहां पे रहे, और उस समय इंद्र को भोजन डिलीवर करने के लिए अग्नि देवता जाते थे। जो यज्ञ का भाग मिलता था उसको अग्नि देवता लेके जाते थे, इंद्र को डिलीवर करते थे। और चूंकि अग्नि देवता तो जल के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो जल के बाहर भोजन रख देते थे। और इंद्र जल के बाहर आते नहीं थे क्योंकि इंद्र को डर लगता था कि वो पाप कन्या जो है वो उनके पीछे आएगी। तो 1000 साल तक इंद्र प्रैक्टिकली भूखे रहे, कुछ खाने नहीं मिला उनको। परंतु वहां पे उस पाप को, पाप से बचने के लिए उसी जगह पे रहे, और साथ साथ लक्ष्मी जी ने उनको बोला कि आप भगवान विष्णु की वर्षिप करिए। 1000 साल तक उन्होंने भगवान विष्णु की वर्षिप की, तो धीरे धीरे उनका जो ये पाप कर्म था, ब्राह्मण को मारने का जो पाप था, वो खत्म हो गया। परंतु 1000 साल तक फिर देवलोक में कोई था नहीं उस समय इंद्र के जाने के बाद। तो देवताओं ने
तुम्हारे
विचार
मन
विमर्श करके
करता है
नहुष,
उसका
राजा नहुष को
अभी लग
इंद्र
जाता
के, इंद्र की पोस्ट, राजा नहुष को इंद्र की पोस्ट पे रखा। परंतु तो राजा
होती
नहुष
नहीं
जैसे इंद्र की
है
पोस्ट पे आते हैं तो,
ये देखो।
हरे कृष्णा, म्यूट कर सकते। तो इंद्र को, इंद्र की जगह पे राजा नहुष को उस समय अलॉट किया गया इंद्र की पोस्ट पे। परंतु जैसे राजा नहुष इंद्र की पोस्ट पे गए तो उनको पोस्ट का घमंड हुआ, और उन्होंने इंद्र की वाइफ सची को एंजॉय करने का प्रयास किया। उन्होंने सची से बोला कि आप मेरे पास आइए, मैं, हम, आप तो इंद्र की पत्नी है और मैं अभी इंद्र की पोस्ट पे हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने सची को जब बोला, और सची बृहस्पति के पास जाती है, और बृहस्पति फिर बोलते हैं कि उनसे बोलो कि जब सप्तऋषि आएंगे लेने के लिए, सप्तऋषि के द्वारा पालकी में आप आओगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो इंद्र ने सप्तऋषियों को अपने पालकी पालकी के नीचे लगाया, और फिर सप्तऋषि लोग इंद्र को जब लेके जा रहे थे, तो सप्तऋषि लोग तो इतने शक्तिशाली नहीं थे, ब्राह्मण है वो। तो इंद्र ने उनको, इंद्र मतलब नहुष, उस समय राजा नहुष इंद्र थे, तो राजा नहुष ने उनको बार बार डांटा। तो अगस्त मुनि ने उनको सांप दे दिया कि आप सांप बन जाएंगे। तो राजा नहुष जो थे वो बाद में सांप बन के इस धरती पे आ गए थे। और फिर 1000 साल बाद जब इंद्र का पाप खत्म हो गया, उसके बाद ये इंद्र फिर से अपनी पोस्ट पे गए और फिर से अपना कार्यभार संभाला। इतना बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो नरेशन है, वृत्तासुर का जो नरेशन है, इसमें भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई किया गया है, उनके भक्तों को ग्लोरीफाई किया गया है। अगर कोई इन घटनाओं को समझता है तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और अपनी इंद्रियों के क्रियाकलापों में बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। उसका ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, और जो भी इस नरेशन को सुनता है या पढ़ता है वो अपने सभी शत्रुओं को जीत लेगा, उसका जीवन की आयु भी बढ़ती रहेगी। और इसलिए जो भी बुद्धिमान स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो हमेशा इस नरेशन को सुनते हैं और बताते हैं और लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। इस तरह से वृत्तासुर का सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है कल हम डिस्कस करेंगे राजा चित्रकेतु की लाइफ, चित्रकेतु के साथ किस प्रकार से हुआ था। चित्रकेतु का स्टोरी आपने सुना भी होगा, फेमस स्टोरी है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
प्रभु जी, मेरा है प्रश्न। प्रभु जी,
यस प्रभु।
एक मेरा प्रश्न है, जैसे कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा होए तो वो अगर इंद्रिय भोग करता होए तो वो भगवान का नाम भी उच्चारण करता होए तो भगवान का नाम उसे इंद्रिय भोग से बाहर निकाल देगा।
उसको बाहर निकलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि मैं इंद्रिय भोग करूंगा और भगवान के नाम से उसको उसको कंपेंसेट करूंगा, तब फिर उसको लाभ नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वो एक अपराध कहलाता है, नाम के बल पे पाप करना।
ठीक है, पर
ओके, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? ओके, कल फिर हम चित्रकेतु का सेक्शन पढ़ेंगे। चित्रकेतु के सेक्शन के बाद 6 कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली सिक्स कैंटो तक अभी हम पहुंचे हैं, पहले से सिक्स कैंटो तक, ये केवल श्रीमद भागवतम का 30% हिस्सा हमने पढ़ा है, 70% अभी बाकी है, क्योंकि सातवें कैंटो से लेकर बारहवें कैंटो तक कम से कम 12,000 श्लोक होते हैं, और पहले से छठवें कैंटो तक 6,000 श्लोक हैं, 11,000 या 12,000 के बीच में।
प्रभु जी
अगले छह कैंटो तक पढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल है, अगर करेंगे तो एक साल तक लग जाएगा लगभग, क्योंकि दसवें कैंटो में 100 अध्याय है। तो मैं सोच रहा था कि छह कैंटो के बाद हम इसको इसको एंड करते हैं, और वैष्णव सदाचार का एक कोर्स जो है वो चालू करने का सोचा था मैंने, जब भी ये खत्म होगा छठवां कैंटो उसके बाद, अगर आप लोगों को ठीक लगता है विचार तो, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने वैष्णव सदाचार की क्लासेस ली थी, पर स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, उस समय हमने कॉमन क्लासेस नहीं किया था, स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस हुआ था, और वो कोर्स भी लंबा है, 3-4 किताबें हैं उसके। तो सैटरडे इवनिंग को ये छठवां स्कंद खत्म करने के बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके
जी प्रभु जी,
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कल हम इसी टाइम पे डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कल, कल या फिर नेक्स्ट वीक में सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय।